धवला लेक्चर नंबर 11। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊनं सिद्धमनंतमणिरिय मणुव मम पत्थसौखमणवचम् केवलपहोहनिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूतबली और पुष्पदंत आचार्य। दूसरी बार का जो अपना यहाँ धवला का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या निवासी पर 89 पृष्ठ पर है। देखो यहाँ बात हो रही थी ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की। द्रव्यार्थिक नय में हमने संग्रह नय नैगम नय संग्रह नय और व्यवहार नय दिया। पर्यायार्थिक के मुख्य दो भेद किए, अर्थ नय और व्यंजन नय। और व्यंजन नय के तीन भेद किए, शब्द समाभिरूढ़ और एवं गुण। तो अभी इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। देखो व्यंजन नय के तीन शब्द तीन भेद देखे ना हमने, तो उसमें शब्द नय क्या करता है, यानी ऋजु सूत्र नय ने तो वर्तमान पर्याय युक्त द्रव्य को विषय कर दिया, यानी वर्तमान पर्याय रूप से वो देख रहा है, उसको उसने विषय किया। अब उसने तो उसको बताने वाले जितने वाचक शब्द है उन सबको एक्सेप्ट किया, परंतु शब्द नय में क्या हुआ कि उसने रोक लगाई कि लिंग समान लिंग शब्द हो तो उसको उसके लिए यूज कर सकते, समान कारक हो, समान वचन वाले हो, एक वचन द्विवचन वगैरह, समान पुरुष वाले हो तो उसको एक साथ हम ले सकते उस वस्तु को बताने के लिए, तो उसमें वे दोष नहीं आने चाहिए। इसको कहेंगे व्यभिचार, दोष नहीं वो शब्दों के उसमें ये बातें दोष रूप से नहीं होनी चाहिए, तो उसको कहते वहाँ लिंग व्यभिचार नहीं होना चाहिए। फिर संख्या व्यभिचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो तारका वगैरह के उदाहरण दिए थे उन्होंने। काल व्यभिचार नहीं होना चाहिए, यानी जिसे ऐसा पुत्र होगा, ऐसे जिसने सारा जग जान लिया है ऐसा पुत्र होगा, तो जान लिया है भूतकाल हो गया, पुत्र होगा भविष्य काल होगा, या वो जानेगा तो बाद में, जान लिया है वो तो बाद में जानेगा, तो अभी उसको कह रहे हैं ये व्यभिचार, ये उसे एक्सेप्ट नहीं है। नहीं नहीं वो बात नहीं, यहाँ पर वो नहीं है, यानी देखो वो क्या कहना चाहते हैं, भविष्य काल में वो सर्वज्ञ हो गए, देखो यहाँ बात क्या चल रही है अपने देखेंगे, ये धवला की पुस्तक चल रही है अभी अपने, आप उनके साथ बैठो। हाँ
अरविंद भाई की है ना,
अरविंद भाई की वहीं पर होगी, अंदर कपाट के अंदर होगी, वहां रखिए अपने, वहां से निकालनी पड़ेगी। त्रिलोक सर हो गए अपना, हाँ अभी धवला का पहली पुस्तक चल रही है। यहाँ क्या बात हो रही है, देखो फिर से देखते हैं 89 पेज पर है। नयों की बात हो रही है, हमने देखा है कि रुजु सूत्र नय जो है वो वर्तमान पर्याय को विषय करता और रुजु सूत्र ने जो वर्तमान पर्याय को बताने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उन शब्दों में से वो चुन चुन कर शब्द ने क्या करता है, उस शब्दों में से कुछ ही शब्द एक साथ हम ले सकते हैं, सभी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसमें समान लिंग वाले शब्द एक साथ ले सकते हैं। पेज नंबर 89 89, तो उसको कहते हैं लिंग व्यभिचार वहाँ नहीं होने चाहिए, यानी एक साथ वो एक ही अर्थ में कोई स्त्रीलिंगी शब्द हो पुल्लिंगी शब्द हो तो नहीं चलेगा। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था अवगमने ज्ञान और विद्या एक ही अर्थ में है, परंतु ज्ञान ये शब्द नपुंसक लिंगी है और विद्या शब्द स्त्रीलिंगी है, तो एक ही वस्तु के लिए एक ही को बताने के लिए दो शब्द एक साथ नहीं चलेगा, ये कहता है शब्द ने। तो कहते कि वो समान लिंग हो तो हम उसको स्वीकार करते हैं, वो लिंग में जो भले वो अर्थ वही बताता हो, तो अलग अलग लिंगों में शब्द आता है तो वो शब्द नहीं चलेंगे। वो शब्द कौन से हम यूज कर रहे हैं उसमें वो स्पेसिफिकेशन है उसकी, वो तो जिसको कही ना उसके बाबत में वो ज्यादा
चौकसाई,
हाँ चौकसाई आपके शब्द में। जैसे पट और वस्त्र, वस्त्र पुल्लिंगी है और पट ये पट पुल्लिंगी है, वस्त्र नपुंसक लिंगी है, तो एक साथ वो एक ही अर्थ में भले शब्द है, शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता। अब संख्या व्यभिचार की बात आई थी 88 पेज पर नीचे के पैराग्राफ में, यानी एक ही जैसे नक्षत्र और पुनर्वसु, तो नक्षत्र शब्द एक वचनांतर, पुनर्वसु शब्द द्विवचनांतर, इसे दो एक साथ नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए। उसके बाद 89 पेज पर हम आए, ये सब हुआ था अपना विषय, तो वहां कहा था कि काल व्यभिचार ने क्या, तो भविष्य काल के साथ भूत काल का प्रयोग करना, उसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जिसने समस्त विश्व को देख लिया है ऐसा पुत्र होगा। देख लिया है कब होगा, जाके बाद में वो देखेगा, यानी सर्वज्ञ कब होगा, केवल ज्ञान होने के बाद सर्वज्ञ होगा, केवल ज्ञान के साथ ऐसा पुत्र होगा। देख लिया है ना, वो भूतकाल हो गया और ऐसा पुत्र होगा वो, तो यानी वो तो एक साथ ये मेल नहीं बैठता है, ऐसे कहने की पद्धति तो है परंतु ये मेल नहीं बैठता, तो शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता, तो इसको कहेंगे काल व्यभिचार। तो यहाँ 88 पेज पर पहली लाइन में बताया था कि कौन कौन से व्यभिचार की निवृत्ति यानी कौन कौन से दोष टालता है ये सब शब्द ने, लिंग संबंधी, संख्या संबंधी, काल संबंधी, अभी कारक की बात यहाँ अपने पढ़ने जा रहे हैं। ये विषय भी 89 पेज पर नीचे का पैराग्राफ जो है नीचे से चौथी लाइन वहां से पढ़ेंगे। एक साधन अर्थात एक कारक के स्थान पर, कारक यानी जो व्याकरण के होते ना विभक्ति जिसको कहेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय इसको विभक्ति कहते हैं, नहीं सुन आप मरा हिंदी में पढ़े ना, हाँ, तो उसमें आता है जैसे हम कारक में क्या कहते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक है ना, तो तृतीया को साधन कहते, साधन यानी करण कारक कहते, चतुर्थी को संप्रदायन कारक कहते, अपादान कारक कहते, पंचमी को, षष्ठी को कारकों में नहीं लिया फिर वो षष्ठी कारक व्याकरण में है, वो सप्तमी में है और संबोधन कारक होता है। तो ये जो कारकों के संबंध में एक ही अर्थ में कहीं द्वितीय का प्रयोग हुए कहीं सप्तमी का, तो वो एक साथ नहीं चलेगा, ये कहते हैं, अब उसको पढ़ेंगे। एक साधन अर्थात एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक के प्रयोग करने को साधन व्यभिचार कहते हैं या कारक व्यभिचार। जैसे ग्रामम अधिशेते, वह ग्राम में शयन करता है, यहाँ पर सप्तमी कारक के स्थान पर द्वितीय कारक का प्रयोग किया गया है। ग्रामम ये संस्कृत में द्वितीय है और ग्रामे कहेंगे तो वो सप्तमी हो जाएगी, उसे गांव में सोता है, तो कहते गांव में सोता है ये ठीक है, परंतु वो गांव सोता है ऐसा कुछ, यानी वो द्वितीय का अर्थ अलग होता है परंतु वो पद्धति है इसे कहने की, तो ये विभक्ति सही नहीं है तो वो एक साथ नहीं चलेगी, ये कहना चाहते हैं कारक में। अब पुरुष व्यभिचार, पुरुष का अर्थ क्या होता है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, यानी मैं और हम ये प्रथम पुरुष हुआ, तू आप और तुम ये द्वितीय पुरुष होगा, और ये आप तृतीय के लिए भी होता है, या वह ये क्या है, वह वे ये सब क्या हुआ तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कहें ना, वो उसकी बात। देखो उत्तम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष आदि के कथन करने को पुरुष व्यभिचार कहते हैं। जैसे ये ही मन्य रथे न यास्यसी नहीं यास्यसी यातस्ते पिता, आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा परंतु अब न जाओगे, तुम्हारा पिता चला गया। यहाँ पर मन्य से के स्थान पर मन्य यह उत्तम पुरुष का और यास्यामि के स्थान पर यास्यसी यह मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। यानी एक बार वो तो यानी अपने प्रथम पुरुष में बात कर रहा है और एक बार अन्य द्वितीय पुरुष की बात कर रहा है, द्वितीय प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष। देखो यानी वो वाक्य नहीं चेंज करना है, ऐसे कहने की पद्धति है परंतु ये शब्द उसको स्वीकार नहीं है। ये यास्यसी का अर्थ क्या है, यास्यामि के स्थान पर यास्यसी बताया हुआ। देखो क्या कहते हैं, मैं रथ से जाऊंगा, यही मन्ये रथे न यही मन्ये रथे न यास्यसी यास्यमि, हाँ नहीं यास्यसी तो अब न जाओगे, तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा पर अब न जाओगे, यानी यहाँ यास्यसी दोनों जगह यास्यसी किया है, वो तो यास्यमि चाहिए था, यास्यामि। देखो ये संस्कृत के वो इसमें यहाँ नहीं फीट बैठते, वो संस्कृत में आप जानोगे तो ही वो फीट बैठेगा। हाँ वही तो, इसलिए वो जाओगे उन्होंने यूज किया है, जाऊंगा चाहिए जाओ, यास्यामि ने जाऊंगा के स्थान पर उन्होंने जाओगे ऐसा। यानी मन्य से के स्थान पर मन्य यह उत्तम पुरुष का है, आप आता है पर वो आपके स्थान उसका क्रियापद प्रथम पुरुष वाला लगाया। हाँ मैं और हम, तो मैं जाता हूँ या मैं जाऊंगा और तुम जाओगे, तो द्वितीय ये जाओगे वाला क्या है द्वितीय पुरुष हुआ, और वो जा रहा है या जाए गया है ये तृतीय पुरुष हो जाएगा। तो ये संस्कृत के व्याकरणों में ये बात होती है, यानी हमें वो हिंदी में बराबर पकड़ में नहीं आता, उसका उदाहरण क्या कहना चाहते हैं, संस्कृत समझता नहीं था। अब उपसर, अभी लास्ट वाला उपग्रह व्यभिचार है ना, अभी यहाँ पर ये संस्कृत शब्दों में ये उपसर्ग लगते हैं, जो धातु है उसके साथ एकाद अक्षर लगाने पर उसके सेम अर्थ में वो धातु अन्य उपसर्ग सहित हो जाता है। देखो उपसर्ग के निमित्त से परस्मै पद के स्थान पर आत्मने पद और आत्मने पद के स्थान पर परस्मै पद के कथन कर देने को उपग्रह व्यभिचार कहते हैं। जैसे रमते के स्थान पर विरमति, दोनों एक ही अर्थ में है परंतु फिर भी हाँ
उपसर्ग।
मैं आम खाता हूँ, आम मेरे से खाया गया,
वो तो अलग होता है, आत्मनिपद और परस्मैपद में अलग हो जाता है, उसका और अर्थ ही अलग है, वो केवल एक्टिव और पैसिव वाली बात नहीं वहां पर। देखो रमते के बदले विरमति है ना, तिष्ठति के स्थान पर संतिष्ठते, तिष्ठति का अर्थ होता है उसी अर्थ में संतिष्ठते या प्रतिष्ठते शब्द आता है। जैसे यावत तावत ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति नहीं लिखा, प्रतिष्ठते लिखा है, वैसे तिष्ठति अगर लगता है तो तिष्ठति डालते हम, हाँ अभी उपसर्ग लगा तो प्रतिष्ठते हो गया, हाँ अभी ये परस्मैपद आत्मनिपद क्या है वो तो संस्कृत व्याकरण नहीं समझ में आए जैसा नहीं है। विषित के स्थान पर निविषते का प्रयोग किया जाता है, यानी वो क्रियापद किस तरह से उसके होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सारे, यानी ये शब्द नहीं को स्वीकार नहीं, दोनों अर्थ एक ही होता है, अर्थ दोनों का तिष्ठति कहो प्रतिष्ठते कहो या संविष, यहाँ लिखा है ना संतिष्ठते कहो, अर्थ एक ही है परंतु वो प्रयोग अलग अलग हो गया ना, तो शब्द नहीं को वो स्वीकार नहीं, बस इतनी बात। इस तरह जितने भी लिंग आदि व्यभिचार यानी जितने सारे दोष बताए गए हैं पूर्व में कहे गए हैं वे सभी अयुक्त है, यानी शब्द नहीं के लिए वो स्वीकार नहीं है, अयुक्त है ना ये वापरे जाते हैं लौकिक में परंतु शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अन्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं हो सकता, इसलिए समान लिंग समान संख्या और समान साधन आदि का कथन करना ही उचित है, शब्द ने उसी को स्वीकार करेगा अन्य को नहीं। अभी आगे वाला शब्द ने तो उसको स्वीकार कर लिया, केवल क्या उन्हें लिंग समान चाहिए संख्या समान चाहिए कारक समान चाहिए तो वो शब्द ने को स्वीकार है। अब आगे वाला समभिरूर वो और अड़ेल है, वो और ज्यादा जिसको कहेंगे उसमें और परीक्षा करता है और फिल्टर लगाता है चालने में, तो कहता है देखो शब्द भेद से जो नाना अर्थों में अभिरूढ़ होता है उसे समभिरूढ़ नहीं कहते हैं, यानी एक ही अर्थ में अनेक शब्द आते हैं और उसको यूज भी करते हैं परंतु उसका अपना जो शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, उसके लिए पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे इंद्रनाथ अर्थात परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण इंद्र, पुरदारनाथ अर्थात नगरों का विभाग करने वाला होने के कारण पुरंदर, और शकनाथ अर्थात सामर्थ्य वाला होने के कारण शक्र। अब ये सभी इंद्र के लिए तीन शब्द आते हैं, शक्र भी कहते हैं इंद्र भी कहते हैं पुरंदर भी कहते हैं, परंतु उनके अभी हमने देखा ना इंद्र क्यों कहा ऐश्वर्यशाली है इसलिए इंद्र कहा और सामर्थ्यशाली इसलिए शक्र कहा, तो अर्थ दोनों का अलग अलग है तो समभिरूढ़ ने उसको स्वीकार नहीं करता, शब्द ने तो सभी को स्वीकार किया, शब्द ने ना स्वीकार किया उसने देखा तीनों का लिंग समान है तो हमको स्वीकार है परंतु समभिरूढ़ कहता है हमको ऐसा नहीं चाहिए, हर एक शब्द कैसे तैयार हुआ तो उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कृष्ण के लिए कितने शब्द आता है वो गिरिधर पर्वत को उठाए तो गिरिधर कहते हैं, है ना, मुरलीधर भी कहते हैं और क्या क्या कहते हैं वासुदेव भी कहते हैं, कितने कितने नाम है उसके, तो हर एक का नाम अलग अलग कारण वो नाम पड़ा है, तो समभिरूढ़ ने सब नामों को स्वीकार नहीं करेगा वो अलग अलग स्वीकार करेगा ये कहना चाहते हैं। ये तीनों शब्द भिन्न अर्थवाचक होने से इन्हें एकार्थवर्ती नहीं समझना चाहिए, इस नय की दृष्टि में, ये इस नय की दृष्टि में पर्यायवाची शब्द नहीं होते, यानी एक ही पदार्थ को बताने वाले ये सभी जो शब्द होते उसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द या एकार्थवाची शब्द, परंतु ये इसे स्वीकार नहीं है क्योंकि भिन्न पदों का एक पदार्थ में रहना स्वीकार कर लेने में विरोध आता है, भिन्न पद यानी भिन्न शब्द वाचक शब्द, भिन्न भिन्न एक ही पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न वाचक शब्द वो स्वीकार नहीं करता। यदि कहा जाए कि भिन्न पदों की एक पदार्थ में वृत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्या कहते हैं, एक ही पदार्थ के लिए अन्य अन्य शब्द वाचक हो सकते हैं, तो हम कहेंगे, तो कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर समस्त पदों में एकत्व की आपत्ति आती है, यानी सभी शब्दों का एक ही अर्थ हो जाएगा। इससे यह तात्पर्य निकला कि जो नए शब्द भेद से अर्थ में भेद स्वीकार करता है उसे समभिरूढ़ नए कहते हैं, यानी वाचक शब्दों के द्वारा अर्थ यानी पदार्थ में जो भेद समझता है उसको ये समभिरूढ़ नए कहते हैं। नाना पदार्थों के भाव अर्थात विशेषता को नानार्थता कहते, अर्थता यानी वो पदार्थ, अर्थ ये पदार्थ एक ही बात है, और उस नानार्थ के प्रति जो अभिरूढ़ है उसे समभिरूढ़ नए कहते हैं। अभिरूढ़ ने नाना अर्थों में जो अभिरूढ़ होता है कि चलाया जाता है, यूज होता है ना, रूढ़ी से अभिरूढ़, हाँ रूढ़ी से चला जाता है, अलग करेगा। ऐसा भी समभिरूढ़ में ये भी आता है कि जैसे एक एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। यहाँ तो एक पदार्थ में अनेक वाचक शब्दों की बात बताई और हर एक का अर्थ अलग अलग स्वीकार किया। अब गाय शब्द के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, तो ये गौ शब्द रूढ़ी से चला है, उसको भी वो समभिरूढ़ नए स्वीकार करता है जो रूढ़ी से चलता है, क्योंकि गोय ने चलने वाले वो गाय, वो बैठी है उसको भी गौ कहेंगे ना, क्यों कहेंगे, वो समभिरूढ़ नए उसको स्वीकार। ऐसा भी है दोनों ओर से, यहाँ उसकी बात नहीं उठाई है, वो भी होता है। एक तो एक पदार्थ के लिए अनेक शब्द है और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें से कौन सा अर्थ लेना जो रूढ़िगत होता है उसको लेना, ये भी उसका अर्थ निकलता है। नहीं यही बात है ना, हाँ वो शब्द के बारह अर्थ।
तो यहाँ पे जितने पद है उतने वो वस्तु में भेद स्वीकार करता है, बराबर ना,
एक ही शब्द अनेक अर्थ में यूज होता है, गौ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं,
या एक ही वस्तु के अनेक भेद शब्दों के द्वारा हो सकता है।
हाँ उसको अलग अलग स्वीकार करते हैं,
अलग अलग स्वीकार,
जैसे उन्होंने बताया ना इंद्र और शक्र और वो भी अर्थ बताए, तो उसको अलग अलग अर्थ में है, वो अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ में है, यानी उन शब्दों के द्वारा पदार्थ ही अलग हो जाता है, जो अलग अलग शब्द अलग अलग वो एक ही भाव उसके अलग अलग भाव उसके द्वारा पकड़ा जाता है। वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो यहाँ नहीं लागू होती। हाँ ऐश्वर्याचं म्हणणं नाही, त्याचं नाव काय, म्हणून इंद्र नाव का दिलं, ऐश्वर्याच्या अपेक्षेने इंद्र नाव दिलं। हा हिंदी हिंदी वैभव या ऐश्वर की अपेक्षा उसको हमने इंद्र नाव दिया, क्योंकि इंद्र हम कहते हैं ये स्वर्गों के इंद्र है, इंद्र है क्यों कहते, उनके ऐश्वर्य की अपेक्षा वो विशेषता होती
है,
वो उसके विशेषण हो गए, ये उसका नाम हो गया। विशेषण तो अलग हो सकते हैं बहुत सारे, ये इसके नाम हो गए ना, अभी हमने कृष्ण के नाम बताए आपको, वो तो उनके नाम ही बताए हैं, नाम ही पांच बताए हैं। हाँ ठीक है वो तो हम, परंतु ऐसा वो नाम स्थापना निक्षेप से भी ये नाम हो सकते हैं, सॉरी नाम निक्षेप से भी ये नाम हो सकते हैं, उसमें से हम अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ देखो अभी आगे, एवं भेद एवं भूत है ना, एवं भेद अर्थात जिस शब्द का, हाँ एवं भेदे भवनात एवं भूता, एवं भूत शब्द कैसे तैयार हुआ, एवं भेद अर्थात जिस शब्द का जो वाच्य है वह तद्रूप क्रिया से परिणत समय में ही पाया जाता है। क्या कहते हैं? अभी तो समभिरूढ़ ने उसके लिए ये सारे शब्द एक ही लिए, अलग अलग स्वीकार कर दिए। अब एवं भूत क्या कहता है कि जो शब्द जो पदार्थ को बता रहे हैं, ये सारी क्या बात है? वर्तमान पर्याय से परिणत की बात चल रही है, उसी के बारे में जो शब्द हमने वहाँ पदार्थ को बताने वाले शब्द ने उसमें कुछ को एक्सेप्ट किया, उसमें से समभिरूढ़ ने और अर्थ की अपेक्षा से ग्रहण किया, एवं भूत ने उसमें और स्पेशल है। क्या करता है वो? तो वो शब्द ऐसा होना चाहिए कि वर्तमान में उसको लागू होना चाहिए। वो वर्तमान में उस पर्याय से तद्रूप है, जैसे चलने वाली गाय है तो वो चल रही है तब उसको स्वीकार करें, बैठे हुए को नहीं। ये कहना चाहते हम कहते ये हमारे पुजारी है, तो वो जब पूजा कर रहे तब उसको पुजारी कहेंगे, ये कहते। अभी हम पढ़ेंगे इसको कि तद्रूप क्रिया से परिणत है नहीं, ये जो वर्तमान पर्याय को विषय करता है तो उस वर्तमान पर्याय से परिणत यानी वो वैसी क्रिया भी होनी चाहिए, परिणत समय में ही पाया जाता है, उसे जो विषय करता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। इस नय की दृष्टि में पदों का समास नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न कालवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों में एक पने का विरोध है। इसी तरह शब्दों में परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि वर्ण अर्थ संख्या और कालादि के भेद से भेद को प्राप्त हुए पदों के दूसरे पदों की अपेक्षा नहीं बन सकती। जबकि एक पद दूसरे पद की अपेक्षा नहीं रख सकता है तो इस नय की दृष्टि में वाक्य भी नहीं बन सकता। इसलिए एक पद एक ही अर्थ का वाचक होता है। एक पद है एक शब्द, एक ही पद एक ही अर्थ को बताने वाला है। इस प्रकार के विषय करने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। अब यहाँ ये उन्होंने उदाहरण दिया है। इस नय की दृष्टि में एक गो शब्द नाना अर्थों में नहीं रहता, यानी उसके अनेक अर्थ नहीं हो सकते इस नय की दृष्टि से, क्योंकि एक स्वभाव वाले एक पद का अनेक अर्थों में रहना विरुद्ध है, तथा पद में रहने वाले वर्णों के भेद से वर्ण ने अक्षर वाच्य भेद का निश्चय करने वाला भी एवं भूत नय है, क्योंकि यह नय इस प्रकार के भेद में उत्पन्न हुआ है। नीचे बहुत सारा दिया है परंतु संस्कृत में सब यानी वही लेना है कि उस क्रिया से परिणत समय में ही उसको स्वीकार करना है। आगे देखते हैं। इस तरह ये नए संक्षेप से सात प्रकार के, कौन से हैं सात प्रकार बोलो अश्विन भाई?
द्रव्यार्थिक और पर्यार्थी निगम नहीं, संग्रह नहीं और पर्याय व्यवहार नहीं।
देखो संग्रह पहले निगम,
संग्रह निगम नहीं, संग्रह और व्यवहार नहीं।
फिर पर्यार्थिक में चार है, रुजु
सूत्र
शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये सात नए हो गए ना। अथवा संक्षेप से सात प्रकार के और अवांतर भेदों से, यानी उसके और भेद के भेद के भेद करते जाओ तो कहते असंख्यात प्रकार के समझना चाहिए। व्यवहार कुशल लोगों को इन नयों का स्वरूप अवश्य समझ लेना चाहिए, अन्यथा अर्थात नयों के स्वरूप को समझे बिना पदार्थों के स्वरूप का प्रतिपादन यानी कथन और उसका ज्ञान अथवा पदार्थों के स्वरूप के प्रतिपादन का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, गुरु को पढ़ाना है तो प्रतिपादन करना है, तो प्रतिपादन नहीं कर सकते, उसका ज्ञान नहीं कर सकते, कथन और ज्ञान नहीं हो सकता। या किसी ने प्रतिपादन किया है वो प्रतिपादन को समझ नहीं सकता। आचार्य क्या बताना चाहते हैं वो हम समझ नहीं सकते। यदि नयों का ज्ञान नहीं होगा तो आचार्यों के कथन को हम सही समझ नहीं पाते, ये उसका अर्थ है। इसलिए नयों का समझना आवश्यक है, कहा भी है। उसके लिए उन्होंने 68-69 ये दो यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। नथि नये ही विहूणम सुत्तम अर्थौ वजिन वरमदम्मी तोणय वादे न्यूना मुनिनो सिद्धन्ति आहुंति तम्माहि गय सुत्तेन अर्थ संपायणम निजयौवम अर्थ गैर्यणयवाद गणलीला दुरहि अम्मा। ये दो नंबर का कहां से आया है, अच्छा उसके समान अर्थ वाले अन्य उन्होंने बताया, उसका अर्थ देखते नीचे। जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है। नयवाद यानी नयों के कथन बिना, जिसको हम कहते ना वो स्यादवाद मुद्रित होती है, स्याद के नए अपेक्षा बताते हैं, नए से कथन होता है। तो जिनवानी पूरी हमारी नयों में गुंजित है। हाँ, नए बिना कोई भी सूत्र और अर्थ कहा ही नहीं है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए। अतः जिसने सूत्र अर्थात परमागम को भले प्रकार जान लिया है उसे ही अर्थ संपादन में, अर्थात अर्थ संपादन ने पदार्थों को अच्छी तरह से जानना चाहिए, नए और प्रमाण के द्वारा पदार्थ के परिज्ञान करने में प्रयत्न करना चाहिए। परिज्ञान ने समीचीन यथार्थ सर्वांगीण ज्ञान पदार्थों का, क्योंकि पदार्थों का परिज्ञान भी नयवाद रूपी जंगल में अंतर्निहित है। यानी इतने सारे जो नयों के अलग अलग कथन है इसका प्रयोजन क्या है, पदार्थों का सही ज्ञान होना, सर्वांगीण ज्ञान होना, अंतर्निहित है उसमें गर्भित है। अतएव दुर अधिगम्य अधिगम्य ने ज्ञान, दूर रहने वो दुर्लभ या कठिन, अर्थात जानने के लिए कठिन है। इस तरह नए प्ररूपणा का वर्णन समाप्त हुआ। देखो 73 पेज की बात चल रही थी ना, 73 में यहाँ ये बात हुई थी, यहाँ की जीवस्थान नाम का यहाँ ग्रंथ का अवतार बता रहे हैं, यानी उत्पत्ति हुई, ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। तो उसमें उत्पत्ति होती है तो वो चार प्रकार से बताई जाती है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। उपक्रम में हमने आनुपूर्वी नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार देखे थे 73 पेज पर। निक्षेप में है ना चार लगाए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव। फिर नयों की बात अभी अपनी हुई, अब अनुगम की बात चलेगी। तो यही बात यहाँ होती है 92 पेज पर। अब अनुगम का निरूपण करते हैं। इस द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप प्रमाण से, ये ऊपर दो नंबर का है ना सूत्र, पहले उसको पढ़ेंगे। सूत्रों को पढ़कर फिर ये पहला सूत्र कौन सा था, हाँ नमो हरिहंसान, तो उसकी बात यहाँ तक चली। अब ये यहाँ दूसरा सूत्र है, एतो इमेसिम चौदसन्नम जीव समासानम मग्गनठदाये तथ इमानी चौदस चेवठानी नादववाणी भवंती। ये सूत्र है, ये जीवस्थान यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ? जरूरी नहीं है। कतवार सूत्र में क्या है? देखो यहाँ क्या लिखा, एत्तो, एत्तो यानी इससे, इससे यानी इस द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध रूप प्रमाण से, इन 14 गुण स्थानों के अन्वेषण रूप। देखो इमेसी मैंने ये इन इन 14 सन्नम 14 जीव समासानम यानी 14 गुण स्थानों के मग्गनठदाये, मग्गना यानी अन्वेषण, अन्वेषण रूप प्रयोजन के होने पर, मग्गनठदाये तत्थ यानी ऐसा होने पर, इमानी 14 चैव ठानानी नादौवानी ऐसा होने पर ही वहाँ ये 14 ही मार्गणा स्थान जानने योग्य है। क्या कहते हैं फिर इसका पढ़ेंगे? हाँ, एत्तो यानी इससे, इससे यानी द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध रूप प्रमाण से, इमेसिम इन, इमानी यानी ये, क्या कहना चाहते हैं? हमें 14 गुणस्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन है हमारा, गुणस्थानों की जीवस्थान में गुणस्थानों की बात है, तो उसमें ये 14 ही मार्गणा स्थान जानने योग्य है। ये मार्गणा स्थान समझते हैं ना कौन?
भेद करते थे।
हाँ बोलो, मार्गणा के नाम सबको मालूम है। हाँ, गति
योग वेद कथा ज्ञान संयम दर्शन
तो कहते ये उनको भी जानना है, गुणस्थानों में जानना है तो इनको जानना आवश्यक है। देखो अभी इसकी चर्चा करिए, सूत्र है ना, तो सूत्र के एक एक शब्द की यहाँ बात चलेगी। एत्तो अर्थात इससे, तो कहते यहाँ एतद पद से किसका ग्रहण किया गया है? समाधान, यहाँ पर एतद पद से प्रमाण का ग्रहण किया है, इसलिए इससे अर्थात प्रमाण से ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए। शंका, यह कैसे जाना कि यहाँ पर एतद पद का प्रमाण से यह अर्थ लिया गया है? उसका समाधान, क्योंकि प्रमाण रूप जीव स्थान का अप्रमाण से अवतार अर्थात उत्पत्ति नहीं हो सकती। बात बताई ना यहाँ पर, इससे यह जाना जाता है यहाँ पर एतो इस पद में स्थित एतत शब्द से प्रमाण का ग्रहण किया गया है, यानी एतद ये शब्द है उसका एतो यानी इससे हो गया उसका, ये प्राकृत के नियम के अनुसार। यहाँ पर यदि कोई यह कहे कि ये क्या कहे, वो इन्वर्टेड 4-5 लाइन का है हो, यहाँ से शुरू होता है ना कार्य में कारणाकुल वगैरह वगैरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में संगत नहीं है, वहां तक वो इन्वर्टेड पूरा किया था हमने, नहीं लगता है, परंतु हमारे समझने के लिए वो करेक्शन नहीं है इन्वर्टेड वाला, ये वो की कहकर शंका क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक की शंका है। वैसे की शब्द डालते हैं तो बीच में इन्वर्टेड लिखने की जरूरत नहीं होती, पर हमारे समझने के लिए वो कौन सी शंका है, तो यहाँ से शंका शुरू होती है। क्या कहते हैं, यहाँ पर यदि कोई यह कहे कि, वो क्या कह रहा है, तभी 6 लाइन पढ़ेंगे उसके लिए। कार्य में कारणाकूल ही गुणधर्म पाए जाते हैं क्योंकि वह कार्य है। क्या अनुमान लगाया कि जैसा कारण वैसा कार्य, कार्य ने पर्याय कारणा के कारण के अनुकूल उसमें गुणधर्म होते हैं, ये उन्होंने पहले शंकाकार ने नियम बताया। इस अनुमान में जो कार्यत्व रूप हेतु है वह प्रमाण रूप कारण से उत्पन्न हुए प्रमाणात्मक जीव स्थान रूप साध्य में पाया जाता है, और अजल स्वरूप हिमवान से उत्पन्न हुई जलात्मक गंगा नदी रूप विपक्ष में भी पाया जाता है। क्या कहते हैं, ये जो आपने बताया ना जैसा कारण है वैसा कार्य होना चाहिए, तो कारण है हिमवान, यानी वो तो पर्वत है, वो अजल स्वरूप है, और वहां से वो नदी निकली, गंगा नदी निकली, वो जल स्वरूप है। तो यहाँ जैसा कारण है वैसा कार्य नहीं हो रहा है, ये शंकाकार पूछ रहा है, समझ में आई बात? हाँ, तो विपक्ष है ना, अन्य भी यहाँ पर भी ये देखा जाता है, ये विपक्ष हुआ, ये प्रतिपक्ष हो गया उसका। अतएव इस कार्यत्व रूप हेतु के पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष में चले जाने के कारण व्यभिचार दोष आता है। यानी आपने ये जो बताया ना, जैसा कारण वैसा कार्य, तो ये अन्यत्र जैसा कारण है वैसा कार्य नहीं पाया जाता, इसलिए आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये शंकाकार की शंका है। अतः यह कहना कि प्रमाण रूप जीव स्थान की उत्पत्ति प्रमाण से ही हुई है, संगत नहीं है। ये शंकाकार का ऑब्जेक्शन क्या है कि आपने प्रमाण से इसकी उत्पत्ति हुई है ये बताया, क्योंकि ये प्रमाण है, तो कहते ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि जहाँ अन्य कारण और अन्य कार्य भी देखा जाता है, ये उसका प्रश्न है, अभी उसको उत्तर देंगे। तो यदि कोई कहे कि कहकर इतने 6 लाइन वाला प्रश्न पूछा, तो कैसे इस शंका को मन में निश्चय करके आचार्य आगे उत्तर देते हैं कि इस तरह अजलात्मक हिमवान से निकलती हुई जलात्मक गंगा नदी से भी व्यभिचार दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर अवयवी से वियोगापाय रूप अर्थात अवयवी से संयोग को प्राप्त हुआ अवयव विवक्षित है। इसका कारण यह है, ये अवयवी से अवयव भिन्न नहीं है, क्योंकि अवयवी से अवयव को सर्वथा भिन्न मान लेने में विरोध आता है। यहाँ क्या कहते हैं, अवयव ने जो अवयवी शरीर को अवयवी कहेंगे, जिसके अवयव होते वो अवयवी, और उसका जो पार्ट है उसको अवयव कहेंगे, तो अवयवी से अवयव जो है वो सर्वथा भिन्न नहीं होते, एक बात। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछता था, हिमवान तो पर्वत है और गंगा तो नदी है, वो जलमय है, और ये पर्वत तो हमने तो ढेर है, मिट्टी जैसा है ना, वो पत्थर है और ये पानी है, जल है। तो कहते हैं कि अजलात्मक हिमवान से निकलती हुई जलात्मक गंगा नदी से भी वो भी उसके दोष नहीं आता है। शंकाकार ने जो हेतु बताया वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवी से, यानी उसने जो बताया है वो अवयवी से ये संयोग में प्राप्त है, यानी वो पर्वत जलमय होकर वो गंगा नदी नहीं निकली है, वहां जो जलमय पार्ट है वो पद्मद्रह, उससे वो निकली है ना, जल से ही जल निकला है, वो पर्वत का जल नहीं हुआ है। देखो विशेषार्थ में यही बात बताई, यद्यपि हिमवान पर्वत अजलात्मक है, परंतु उस पर्वत के जिस भाग से गंगा नदी निकली है वह भाग जलमय ही है। कौन से भाग से निकली है, हिमवान पर्वत के कौन से भाग से गंगा नदी निकली है?
द्रव से भी,
द्रव का नाम क्या है उसका, पद्म सरोवर वो हिमवान पर्वत के ऊपर है, और वो सरोवर तो जलमय है, और उसमें से गंगा नदी निकली, ये कहना चाहते हैं। तो जिस भाग से गंगा नदी निकली वो भाग जलमय ही है। हाँ, विरोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिमवान पर्वत से उसका जलात्मक अवयव ग्रहण करना चाहिए, वो जलमय भाग से वो निकला। इससे जो पहले व्यभिचार दोष दे आए हैं वह दोष भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हिमवान पर्वत का जलात्मक भाग ही ग्रहण किया गया है और उससे गंगा नदी निकली है, वो पर्वत का नहीं हुआ है पानी, समझ में आई बात? अतएव इसे विपक्ष न समझकर सपक्ष ही समझना चाहिए। इस तरह सिद्ध हो जाता है प्रमाण स्वरूप जीव स्थान की उत्पत्ति प्रमाण से ही हुई है। यानी उसने वो अन्य कारण अन्य कार्य ऐसा जो उदाहरण दिया था वो भी घटित नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं। जीव स्थान प्रमाण है तो उसकी उत्पत्ति भी प्रमाण से ही हुई है, ये कहना चाहते हैं। अब ये जो प्रमाण है वो दो प्रकार का बता रहे, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से। वह प्रमाण दो प्रकार का है, अभी हमने अर्थ किया था ना, ये दो नंबर के सूत्र का जो हिंदी अर्थ लिखा था 92 पेज पर, तो उसने इस द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप प्रमाण से, ऐसा उन्होंने ट्रांसलेशन में लिख दिया था, एत्तो का अर्थ इतना किया था, और वो क्यों किया उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो ये प्रमाण द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से दो प्रकार का है। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा शब्द प्रमात्रु और प्रमेय के अवलंबन से, देखो प्रमात्रु यानी ज्ञातृ, प्रमेय यानी ज्ञेय, प्रमाता यानी ज्ञाता, प्रमात्रु यानी ज्ञातृ, तो उसके अवलंबन से, इन्हें शब्दों के अवलंबन से संख्यात, ज्ञातृ वो असंख्यात, और प्रमेय ने ज्ञेय की अपेक्षा से अनंत रूप द्रव्य जीव स्थान का अवतार हुआ है। यानी जीव स्थान के जो शब्द है वो संख्यात है, ज्ञातृ असंख्यात है, और उसके प्रमेय जो ज्ञेय है वो अनंत रूप है। भाव प्रमाण के पांच भेद है, आभिनिबोधिक भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, ये आभिनिबोधिक मति को कहते हैं, आत्मति ज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान, ये हमेशा भी इस पुस्तक में तो यही शब्द आएगा, ये आभिनिबोधिक कैसे तैयार हुआ,
सन्मुख,
किसका अर्थ सन्मुख, अभी यानी अभिमुख सन्मुख, ये मति ज्ञान क्या करता है, क्या बताता है, इंद्रिय, इंद्रिय जो ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय और मन दोनों ले जाए, तो हमें हम देखते हैं ये कोई हमने चीज देखी, देखी तो ये आंखों के सामने होनी चाहिए, पीछे वाली बात नहीं दिखाई दे रही, अभिमुख यानी सन्मुख वाले को जानते हैं, इसको कहेंगे अभिमुख। नी यानी निश्चित विषय को जानता है, यानी जो नेत्र है वो वर्ण को जानेगा, वो संगीत को नहीं जानेगा, कर्ण के द्वारा ध्वनि सुनाई देगी, वो कर्ण के द्वारा वो हल्का है क्या भारी है वो पता नहीं चलेगा, स्पर्श के द्वारा वो ठंडा है कि गर्म है, हल्का है कि भारी है, सब स्पर्श के द्वारा, वो नियमित अपने अपने एक इंद्रिय अपने विषय को जानती है, दूसरे विषय को नहीं जानती। अभी देख के हमारी अभी आंखें थक गई, तभी कान थोड़ा देखने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा, नाक को बोलो ना थोड़ी टाइम करने, कभी नहीं करता, तो इंद्रिय अपने विषय को ही जानती है, अन्य विषय को नहीं, तो अभिमुख होकर जानती है, निश्चित विषय को जानती है, अभि नि बोधिक, बोधिक यानी ज्ञान, यानी मति ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान का अर्थ होता है मति ज्ञान, सर्वत्र यही शब्द आएगा यहाँ पर। तो अभिनिबोधिक भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मनपर्याय भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण। अब यहाँ कहते हैं ये मति ज्ञान की बात है ना, अभिनिबोधिक या मति ज्ञान है, उसके यहाँ अलग अलग ये जो भाव प्रमाण के भेद है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। उनमें पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से, यानी जो जीव जितने इंद्रिय वाला होगा उसको उतने निमित्त होगी, यानी पांचों ही चाहिए, मन ही चाहिए, ऐसे समझने, एक इंद्रिय होगा तो स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से उसको जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है उसका, उसके लिए एक ही इंद्रिय है वहां पर, क्योंकि ये और शब्द है ना, उसके लिए कितने लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, ये और के बदले या चाहिए ऐसा भी कहने वाले, उसमें कोई अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से तथा मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभन से, क्या कहना चाहते हैं, ये तो पांच इंद्रिय और मन ये भी निमित्त है, और कहते हैं कि मति ज्ञानावरण का क्षोभन, जो कर्मों का जो क्षोभन है वो भी लेते हैं। अब यह वीर्यांतराय की बात नहीं की, जहां जहां परिभाषा आती है उसकी तो वहां वीर्यांतराय को भी ले लेते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण के साथ वीर्यांतराय का भी क्षोभन पाया जाता है, जैसे अनंत ज्ञान केवल ज्ञान है वहां तो ज्ञानावरण का क्षय है, तो वीर्यांतराय का भी क्षय हुआ, ज्ञान में इसका निमित्त पड़ता है, इसलिए मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभम से पैदा हुआ। अब ये मति ज्ञान कैसा कैसा है तो उसके पहले भेद बताए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप, उसके लिए हमने वो मोक्ष शास्त्र के अपेक्षा वो अंग्रेजी शब्द ये थे ना, उसमें अवग्रह के लिए परसेप्शन लिया था, यहाँ के लिए कंसेप्शन बताया था, अवाय के लिए जजमेंट बताया था और धारणा के लिए रिटेंशन बताया था। रिटेंशन यानी कालांतर के बाद वो स्मरण में आ सकता है ना, याद रखना, वो तो स्मृति हो गई, याद में आना। धारणा यानी वो तो उसको संस्कार का कारण बताया, यानी उस समय वो ऐसा पक्का हो गया कि कालांतर में भी याद आता है। जैसे आपके उसमें मोबाइल में या उसमें कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, तो धारणा हो गई है। देखो ये इसके कितने भेद के पहले में, पहले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तथा उसके विषय की अपेक्षा भी बताएंगे उसमें। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये तो पांच इंद्रिया हुए ना, और मन के लिए दृष्ट यानी देखा हुआ, श्रुत सुना हुआ, तथा अनुभूत अन्य इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूत किया है, ऐसे पदार्थ को विषय करने वाला, यानी इंद्रियों के और मन के विषय लिया यहाँ पर। और अभी उस पदार्थों में भी विषय की अपेक्षा भी उसमें और भेद कर दिए उन्होंने, कौन से, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव, और ऐसे ही उसके अगेंस्ट बहु के बदले एकविध, अक्षिप्र, निश्रुत, उक्त और अध्रुव के भेद से 336 भेद रूप आभिनिबोधिक मति ज्ञान होता है। अभी उसके बहुत सारे यहाँ उन्होंने डिटेल्स नहीं बताए हैं। अवग्रह का अर्थ क्या होता है, आद्य ग्रहण, शुरुआत में जो ग्रहण, यानी वो तो ज्ञान की बात है ना, जो कोई परसेप्शन हुआ है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, उसको अवग्रह कहेंगे। ईहा में क्या होता है, विषय जानने की चेष्टा होगी, यानी और उसमें स्पेसिफिकेशन, तो वो हो जाता है प्रयत्न, जो है वो है ईहा। अवाय यानी वो निश्चय, उसमें से कोई चिन्ह, विशेष चिन्ह के द्वारा उसको हमने निश्चय किया, वो हो गया अवाय। और धारणा यानी कालांतर में भी वो न भूलने, ऐसा उस समय वो जो ज्ञान हुआ उसको कहेंगे हम धारणा। ये उसके चार भेद हो गए। अब अवग्रह के भी बहुत सारे भेद होते हैं, अवग्रह के, क्योंकि इसके 336 भेद कैसे हुए, तो अवग्रह के मूल में दो भेद होते हैं, मालूम है, कब भूल गए, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह ने पांच इंद्रियों और मन के द्वारा, यानी छह हो गए ना, तो उनके द्वारा जो होता है अवग्रह, तो पांच इंद्रियों और मन, ये छह हो गए, तो उनके द्वारा अर्थावग्रह होता है। यानी अर्थावग्रह के बाद ये सब मति ज्ञान होते हैं, अन्य अवग्रह, यहाँ अवय धारणा सब होते हैं। व्यंजनावग्रह ने अवग्रह, जब अर्थावग्रह हुआ है ना, स्पष्ट में उसमें ख्याल में आया, उसको ख्याल में आने के पहले अव्यक्त है, उसको ज्ञान हुआ है पर वो अव्यक्त है, तो उसमें क्या होता है, वो किसके द्वारा होता है, जो मन या आंखों के द्वारा डायरेक्ट व्यक्त ही होता है, मन स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होता है, तो पहले अव्यक्त होता है बाद में व्यक्त होता है। देखो हम ऐसा भी देखते, हम देख रहे कि मच्छर बैठ के काट रहा है, परंतु तो हमें वहाँ कुछ, यानी वो तो यानी वो स्पर्श संबंधी ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमको ख्याल में नहीं आ रहा है, तो ख्याल में आता है, तो उसके पहले कुछ काल बीत गया, उसमें भी उसका ग्रहण हुआ है, पर वो अव्यक्त रूप से हुआ, तो उसको हम कहेंगे व्यंजनावग्रह, वो बाद में अर्थावग्रह हो जाता है, पहले अर्थ व्यंजनावग्रह होकर फिर अर्थावग्रह होता है। ये चार इंद्रियों के बारे में, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्रिय के बारे में ये होता है। हम ऐसा भी देखते हैं ना, देखो कभी कभी क्या है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और वो तड़का है या तेल बॉयल हो रहा है, वो एक आध छींटा यहाँ गिर जाता है, गिर जाता है, परंतु गिरता हुआ हमें पता चलता है, वो सेंसेशन थोड़ी देर के बाद ख्याल में आता है ना, वो जलना थोड़ी देर के बाद चालू हो जाता है। उसमें क्या हुआ, पहले व्यंजना वग्र हुआ, फिर अर्था वग्र हुआ, यानी वहाँ कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है वहाँ ज्ञान का, परंतु वो अव्यक्त रूप से है। नेत्र और मन, मन मन मन, क्योंकि मन के द्वारा डायरेक्ट हम जिसका विचार कर रहे हैं वो तो अपने ख्याल में आ जाता है, उसमें वो अव्यक्त नहीं होता, जो है वो व्यक्त ही, डायरेक्ट व्यक्त ही हो जाता है। यानी ये चार ही है ना 20 के, और वहां तो उसके 5 इंद्रिय मन के द्वारा वो हो रहा है। अब ये जो अन्य अन्य भेद बताए उन्होंने विषय की अपेक्षा, ये 12 बताए, देखो ये पहले 6 बताए ना, बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुत्तर ध्रुव, इसके अगेंस्ट वाले ऐसे 6 और 6 12 हो जाते हैं भेद।
हाँ।
तो बहु ने एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान, जैसे आपने ये, हमने आपको ये हाथ 5 उंगली एक साथ देखती है ना, या अनेक पदार्थों का ज्ञान है, बहुत सारे हमने यहाँ कुछ चीजें रखी है तो एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान होना, ये सब चीजें हमने इकट्ठी रखी तो एक साथ ये अलग अलग टाइप के हम सब देख सकते हैं। बहुविधा ने अनेक प्रकार के पदार्थ, देखो क्या कहते हैं, जैसे हमने एक मुट्ठी भर यहाँ चावल रखे तो अनेक हुए ना चावल, परंतु वो एक ही टाइप के हैं, एक ही जाति के हैं, परंतु एक साथ हमने वो थोड़ा चावल थोड़े दाल थोड़े गेहूँ इकट्ठा मिक्स करके रखे तो अनेक प्रकार के हुए, एक ये कहते हैं अनेक प्रकार, बहुविध हो जाते। एक है ना एक पदार्थ का या थोड़े का ज्ञान, एक विधि ने एक प्रकार के पदार्थ का ज्ञान। अब क्षिप्र और अक्षिप्र में क्या समझना, क्षिप्र ने शीघ्रता से होता, जैसे बिजली की चमक हो रही उसको जान लिया हमने, अक्षिप्र ने धीरे धीरे लंबे काल तक, उसको अक्षिप्र कहेंगे। यानी ये पदार्थों के भेद है, विषयों के भेद है, जल्दी जानना हमने जल्दी जान लिया उसकी बात नहीं है, यानी हमने थोड़े काल में जाना उसकी बात नहीं है, वो पदार्थ क्या है कोई तो धीरे धीरे चल रहा है उसको हमने जाना, या कोई जल्दी यानी बिजली चमक गई उसको जाना, ये विषयों के भेद से ये भेद हो रहे, ज्ञान के भेद कहलाते हैं। अनिश्रुत यानी क्या है, निश्रुत का अर्थ होता है पूर्ण प्रकट, व्यक्त का ज्ञान होना, और अनिश्रुत यानी पूरा प्रकट नहीं है। हाँ हाथी की सुन, सुन के द्वारा हमने पूरे हाथी का ज्ञान कर लिया। अब उक्त यानी वर्णन सुनने पर पदार्थ का ज्ञान, और अनुक्त यानी वर्णन सुने बिना ही जो हम पदार्थ का ज्ञान करेंगे सब। हाँ बिना बताए तो यह अनुक्त हो जाता, और वैसे भी ये ध्रुव और अध्रुव भी है ना, उसका एक भेद क्या बताएं, ध्रुव लास्ट वाला ध्रुव और अध्रुव, ये ज्ञान बहुत काल तक वैसा का वैसा दृढ़ होता है, और अध्रुव ने वो क्षण क्षण ही नाधिक होता है, उसको अध्रुव कहें। तो इसे 12 भेद उसके और करना, तो पहले हमने क्या क्या भेद किया, अवग्रह यावाय और धारणा, और ये 12 जो है उसकी अपेक्षा उसमें। हाँ यानी पहले स्पर्श रस रूप गंध, देखो अर्थावग्रह में क्या लिया, 5 इंद्रिय और मन, 6 हुआ वो, 6 ये अर्थावग्रह के हुए, और विषयों की अपेक्षा उसमें भेद किए, 12 हो गए ना, और फिर अवग्रह या अवाय धारणा सब 4 लगा लेने, और इसमें व्यंजनावग्रह की उसके पहले 4 इंद्रियों के द्वारा होते हैं वो 12 भेद, 48 उसमें मिला देना, 48 हो गए हैं, ये उसमें मिलाना पहले वाले में। हाँ इसीलिए 4 लिए, 4 × 12 ये 48 हुए, और पहले कौन से हुए, ये 6 हुए थे ना, 62 × 4 4 × 8 4 = 28 288 336 हो जाते थे, समझ आई बात? ये मति ज्ञान के 336 ले लिए, अवग्रह यहाँ आवाय धारणा के भेद से चार। अब हम व्यंजनावग्रह को अलग रखते हैं, अर्थावग्रह उसमें से अर्थावग्रह के भेद देखेंगे, पांच इंद्रिय और मन के द्वारा, और ये 12 विषय हुए तो उसकी बात करें, 12 विषय, फिर उसके 6 इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय मन 12 तक 72, और उसमें अवग्रह यहाँ आवाय धारणा, वह कौन सा अवग्रह लिया? अर्थावग्रह लिया, यानी ये सब इतने हो गए, 288 हो गए। अब उसमें और क्या मिलाना, जो एक्स्ट्रा जो व्यंजनावग्रह भी जिसका होता है उसको भी लेना, अर्थावग्रह के पहले ये हुआ था, इसलिए 4 इंद्रियों के द्वारा और ये 12 विषयों के बारे में 48 उसमें और मिला देना, 288 में ये 48 और मिला देना, तो ये होगा। तो ये 336 भेद रूप ये मति ज्ञान हुआ। अब हमको श्रुत ज्ञान क्या है बता देखना है। श्रुत ज्ञान की परिभाषा याद है आपको? जैसे अन्य पदार्थ के ज्ञान के द्वारा अन्य कोई अन्य पदार्थ जान लेना, ये भी यहाँ क्या कहते हैं, जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है, जो मति ज्ञान से ग्रहण किए गए पदार्थ को छोड़कर तत्संबंधित दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है, यानी मति ज्ञान से हमने शब्द सुना, करण इंद्रिय के द्वारा शब्द सुना, क्या शब्द सुना? शक्कर। किसका ज्ञान हुआ? शक्कर का कि शब्द का?
शक्कर का,
शक्कर नाम के शब्द का, वो शब्द का ज्ञान है, वो शब्द से हमको वो पदार्थ ख्याल में आया जो डब्बे में रखे है, सफेद है, अरे अपने खलास हुई अभी लानी है, अब शक्कर का आज क्या बनाना है, ये जब सब ज्ञान चल रहा है ना, वो श्रुत ज्ञान के है। शब्द तो हमने केवल शक्कर सुना या यहाँ लिखा हुआ, वो तो नेत्र से हमने, वो मति ज्ञान हुआ, आंखों से हमने शक्कर ऐसा लिखा हुआ देखा, तो हमें वो पदार्थ का ज्ञान हुआ, वो क्या है?
श्रुत
ज्ञान। यह हमने आत्मा पढ़ा या सुना, या आत्मा संबंधी हमने ये जो ये शास्त्र में से पढ़ रहे, तो ये सुने हुए को नहीं रहे, ये मति ज्ञान को नहीं रहे, वो श्रुत ज्ञान के द्वारा हमने उस पदार्थ को आत्मा को जान लिया, तो ये हमने इस मति ज्ञान से तो हमने ये तो वाक्य व्याख्यान सुना, ध्वनि सुनी, उसके द्वारा हमने अपने आत्मा को जाना, तो वो श्रुत ज्ञान के है। तो जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है, जो मति ज्ञान से ग्रहण किए गए पदार्थ को छोड़कर, यानी वो शब्द को छोड़ा, वो हमने शब्द को जाना है, तत्संबंधित दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है, और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा हुई, पहले यहाँ केवल परिभाषाएं बता रहे, अब अवधि ज्ञान की बता रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य को जो प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी ये तो इंद्रियों के द्वारा जानना, ये तो परोक्ष हुआ, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहा, तो ये तो प्रत्यक्ष जान रहा है अपने ज्ञान के द्वारा। केवल ज्ञान को तो सर्व प्रत्यक्ष कहेंगे, सकल प्रत्यक्ष कहेंगे, इसको विकल प्रत्यक्ष, क्योंकि उसकी कुछ उसमें मर्यादा है ना, द्रव्य की मर्यादा, यानी कितने परमाणुओं के स्कंद तक को जानता है, तक तक शब्द लगाना आवश्यक है, जैसे इतने बड़े पुद्गल स्कंद को तो जानता है, परंतु ऐसा कोई अवधि ज्ञान है तो इतने ये नाखून जितने स्कंद को भी जानेगा, कोई और ज़्यादा पावरफुल है अवधि ज्ञान तो 10 परमाणु के स्कंद को भी जानेगा, सर्वावधि वाला है एक परमाणु तक को जानेगा। जैसे आपने वो चश्मा पहनती हो तो तपासने को गई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था, डॉक्टर ने बोला ये चार्ट पढ़ो सामने का, तो पहले चार्ट में तो पहले लाइन में तो बड़े बड़े अक्षर थे, दूसरे में थोड़े छोटे थे, तीसरे में मैंने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी, चौथे में तो गड़बड़ गड़बड़ चालू हो गई है ना, तो तीसरी तक स्पष्ट पढ़ा, चौथी पांचवी छठी वो नहीं पढ़ सकते। कहाँ तक पढ़ा? तीसरी तक पढ़ा मान लेते, और किसी ने, भाई ने तो पांचवी लाइन तक पढ़ा, तो किसके आंखें ज्यादा पावरफुल अच्छी है? पांचवी तक पढ़ने वाले। तो द्रव्य की मर्यादा यानी कहाँ तक वो जानता है, कितने छोटे स्कंद तक जानेगा, उसको कहेंगे द्रव्य की अपेक्षा मर्यादा। सबसे पावरफुल है सर्वावधि, परमाणु तक को जानेगा, एक एक परमाणु को अलग अलग जान सकता है, यह द्रव्य की अपेक्षा उसमें मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा है ना, कितने प्रदेशों तक वो जानता है, कोई ऐसा है कि यहाँ से 10 फुट एरिया में उसके अवधि ज्ञान चलेगा? कोई ऐसा तो पूरे बम्बई तक चलेगा, कोई ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान तक चलेगा, कोई ऐसे भी है कि पूरे लोक की बातें जानेंगे। वो सर्वावधि वाले तो कितने असंख्यात लोक तक जानेंगे, तो असंख्यात लोक तक पुद्गल है क्या?
नहीं
है। पुद्गल कहाँ रहता है?
लोक तक।
मैं, हम असंख्यात लोक कह रहे हैं, असंख्यात लोक है ना, लोक से असंख्यात गुना बाहर चले जाओ तो, हाँ जैसे एक लोग, दो लोग, चार लोग, ऐसे 10 लोग कहो, हजार लोग, करोड़ लोग, ऐसा है कि इतने लोग? लोग तो एक ही है, तो परंतु उनमें इतनी पावर है, ऐसे असंख्यात लोग होते तो वहां तक जान लेते, ये उसका, ये उसकी क्षेत्र की अपेक्षा मर्यादा। काल की अपेक्षा ने कोई होगा समय पहला समय बाद तक का जाने, कोई एक घंटे पहले एक घंटे पश्चात तक का जानेगा, कोई कितने एक पल्ले पूर्व तक का एक पल्ले पश्चात तक का जानेगा, इसको कहेंगे वो काल की अपेक्षा, यानी जितना पावरफुल है उसने उसने लंबा काल तक जानेगा, यानी वर्तमान से पूर्व का और उतना ही पश्चात वाला जानता है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, यानी जो पुद्गल को जानते हैं उसके कुछ पर्यायों को जानेंगे, कितने पर्याय उनको जान सकते हैं, उसको वो भाव की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि केवल ज्ञानी तो अनादि अनंत सब जानेंगे, उन तो अवधि ज्ञानी के लिए मर्यादा है ना, इसलिए वो मर्यादा लाए। अभी इसका हम पढ़ेंगे यहाँ से, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से, यानी उसमें अलग अलग भेद होते हैं वो अवधि ज्ञान के, अनेक प्रकार के पुद्गल को, यानी द्रव्य की अपेक्षा पुद्गल यानी वो तो हमने बताया कितने सूक्ष्म तक जानता है, वो जो प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, यानी इसमें वो आंखों से देखकर वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जान लेता है। यह ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से जानता हुआ एक जीव के औदारिक शरीर के संचय के लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण खंड करने पर उनमें से एक खंड तक को जानता है, और उत्कृष्ट रूप से अर्थात उत्कृष्ट अवधि ज्ञान एक परमाणु तक को जानता है। हाँ देखो क्या कहना चाहते हैं, यानी जघन्य अवधि ज्ञान कितने को जानेगा? तो जघन्य अवधि ज्ञान जो है, एक जीव का औदारिक शरीर का संचय कितना है? अभी निगोद का ले लो, ले लेना, निगोद का जो स्कंद बना है औदारिक शरीर का, उसके कितने खंड करना? लोक प्रमाण खंड कर दो, तो उसमें एक खंड तक को जानेगा जघन्य अवधि,
एक परमाणु तक को जानेगा,
एक परमाणु तक को उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जानेगा, वो स्कंद तक को जानेगा। हाँ हाँ, तो उसका जो स्कंद बनेगा
उससे को जानेगा,
जघन्य ज्ञान जानेगा। हाँ
देखो, अभी आपने तो उदाहरण बहुत डिफिकल्ट दिया, हम महामच्छर की बात लेते हैं,
हम महामच्छर की बात लेते हैं, तो महामच्छर का आकार हमारे तरफ से तो 12.5 करोड़ योजन घन योजन है, उसके हमने लोकाकाश जित प्रमाण टुकड़े किए, लोकाकाश में कितने हैं असंख्यात प्रदेश है और इसके पास कितने हैं अनंत प्रदेश है, तो अनंत डिवाइडेड बाय असंख्यात, तो जो कोई भाग आएगा वो तो एक एक परमाणु नहीं होगा, वो अनेक परमाणुओं का स्कंद होगा। अभी आपने जो बताया कि एक निगोद शरीर, यानी निगोद शरीर के वो भी अनंत परमाणुओं का स्कंद है।
जरा पीछे की वो पुस्तक देना, आपके पीछे का कपाट खोल देना, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का। अभी वो राइट से पांचवा छठा पुस्तक है ना लाल, वो नहीं इधर से, हाँ ये वाले लाल।
तो हमने क्या देखा कि भले निगोदिया जीव का शरीर है वह भी अनंत प्रदेशी है, उसके भी हम टुकड़े करेंगे लोकाकाश जितने,
प्रदेशी का अर्थ परमाणु हो गया ना,
परमाणु कंटेंस वन प्रदेश, तो वो कितने हैं असंख्यात प्रदेशी कहेंगे ना, तो उसको भी हम अगर लोकाकाश के इससे डिवाइड करेंगे तो उसमें भी बड़ा ही, मतलब एक परमाणु नहीं रहेगा, एक से अधिक परमाणु होंगे, वो जो कोई स्कंद होगा वो जघन्य अवधि ज्ञान वाले का विषय कह रहे हैं। ये दोबारा पढ़ने का फायदा, मैं भी नहीं समझा था उस समय।
अवधि क्षेत्र बताया है,
आप क्या देख रहे हैं?
मैं वही देशावधि का जगन्य द्रव्य बताने ना, क्षेत्र तो उसमें सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना वाला लिया है। देखो इसका अभी जो हमने देखा ना उसका अर्थ देखते हैं। ये द्रव्य कितना है वो उसकी बात है ना, यानी औदारिक का संचय जो हुआ है उसको लोक विभक्तम करना है, लोक का जो प्रमाण है उससे विभाग भेद करना है उसका, उसका मैं यहाँ जीव कांड में से पढ़ के बता रही हूँ। 515 नंबर का पेज है। मध्यम योग के परिणमन से निष्पन्न ऐसा नौ कर्म रूप औदारिक शरीर का संचय, औदारिक शरीर का संचय किसको कहते हैं? जैसे कर्म कितना है हमारे पास, हर समय एक एक समय प्रबद्ध ले रहे और सत्ता में इतना पड़ा है, वैसे ही औदारिक शरीर का जो संचय कहेंगे किसको कहेंगे? औदारिक शरीर के परमाणु भी हर समय हम ले रहे हैं, हर समय थोड़े जा रहे हैं, तो उसका संचय कितना हुआ अपने साथ, तो उसको कहते हैं वो औदारिक शरीर के डेढ़ गुना आने से उसके समय प्रबद्ध को गुणा करना। यहाँ पर भी वही है, कर्म की भी बात हम क्या कहते हैं, डेढ़ गुना आने गुणित समय प्रबद्ध, वो कर्मों का जो समय प्रबद्ध है उसको उसके डेढ़ गुना आने से गुणा करते हैं। ऐसे औदारिक का जो समय प्रबद्ध है उसको इसके डेढ़ गुना आने से गुणा करेंगे, ये औदारिक शरीर का संचय है। यानी एक समय में औदारिक शरीर का कितना पड़ा है संचय, कभी योग कम होता है कभी ज़्यादा होता है, यहाँ मध्यम योग का लिया है, तो मध्यम योग से जो औदारिक शरीर का संचय हुआ है उसकी बात यहाँ लेते हैं। तो कहते हैं औदारिक शरीर का सत्तारूप द्रव्य कितना है, डेढ़ गुणाने से औदारिक के समय प्रबद्ध को गुणा करने पर उस प्रमाण औदारिक का सत्तारूप द्रव्य हुआ है, क्योंकि हर एक के वो अलग अलग समय प्रबद्ध वगैरह अलग अलग होते हैं। ये औदारिक का समय प्रबद्ध यहाँ अभी हमने वहां रेफरेंस पूर्व में लिखे हैं, और हर एक के अलग अलग जो होते हैं यहाँ, तो मैं जरा 363 पेज पर जो रेफरेंस ले रहा है ना उसकी बात देख रही थी मैं। तेजस और कारमान की गुणहानि तो पल्ले के असंख्यात भाग है, मुझे औदारिक के देखना था। ठीक, जाने दो। अभी हम केवल इतना ही लेते हैं, पहले मध्यम योग से निष्पन्न हुआ, दूसरी उसकी सत्ता रूप द्रव्य कितना है तो डेढ़ गुना हानि गुणित समय प्रवर्तन। अब इसको क्या करना है, और वो अपने विश्रसोपचय से सहित है ऐसा लेना। विश्रसोपचय किसको कहते हैं?
एक एक परमाणु,
जैसे कर्म में तो कर्म जीव ने ग्रहण किया, एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंत अन्य परमाणु जो जीव के कोई नहीं लगते वो उसके साथ चिपके हुए रहे, ऐसे औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए, उसके साथ उसका जो स्निग्धत्व रूपसत्व है उसके कारण अन्य अनंत परमाणु उसके साथ चिपके हुए, एक एक परमाणु के साथ अनंत। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तीनों के होते हैं, औदारिक शरीर का अलग है, तेजस शरीर का अलग है, कारमान शरीर का अलग है, तीनों के विश्रसोपचय अलग है। यहाँ औदारिक शरीर प्लस उसका विश्रसोपचय लिया, उसके मेहमान है। तो कहते उसको क्या करना, अभी लोक प्रमाण असंख्यात, लोक में जितना असंख्यात है उसको लोक प्रमाण असंख्यात कहते हैं। एक लोक में जितने प्रदेश है, कितने हैं? असंख्यात है, उसका नाम क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात, उससे भाग देना। एक भाग मात्र जितना आएगा द्रव्य, यानी इतने परमाणुओं का स्कंद, जघन्य अवधि ज्ञान उसको जानता, आगे आगे वाले अवधि ज्ञान उससे छोटे स्कंदों तक को जानेंगे, और सर्वावधि वाला जो है वो एक परमाणु तक को जानेगा। इसमें भी कितने अनंत परमाणु आ गए ना, क्योंकि औदारिक शरीर के अनंत अनंत परमाणु, उसका विश्रोत्सोपचय और उसके केवल वो असंख्यात से भाग दिया, तो उसका जितना स्कंद हुआ उतने, मान लेते हम इतने एरिया तक को जानते, पर उसमें कौन से बड़े बड़े स्कंदों को तो जान ही सकता है, कहाँ तक के स्कंदों को जानेगा? तो इतने छोटे स्कंद तक, उससे छोटे स्कंद उसके ज्ञान का विषय नहीं। ठीक है, ये समय ज्ञान चंद्रिका की बात। हाँ, ये बहुत ज्यादा डिटेल है।
जब हम पढ़ते हैं तो मन लगता है कि पढ़ना चाहिए।
हाँ, ये वो पढ़ा है, सब अंडरलाइन किया है, मगर क्या है कालांतर में फिर वो थोड़े भूल जाते हैं। यहाँ तो बहुत मोटी मोटी बात है ना, ये भी पुस्तक हमने पढ़ा था, वो सारा मति ज्ञान के भेद को मोक्ष शास्त्र निकाल कर सब पढ़ के बताया। अभी तो हम बहुत, क्योंकि ये अपने एक बार हुआ है वाचन का, इसलिए फास्ट ले रहे हैं इसको, जरा इतने डिटेल में नहीं जा रहे, नहीं तो एक एक शब्द पर हम एक एक रेफरेंस निकाल के पढ़ते जाएंगे ना। अभी इन लोगों को बताया था ना कि नए चक्र दे दूं क्या, हमने बोला उसमें चले जाएंगे, अभी इसमें नहीं लिया। जैसे अपने यहाँ पहली बार हुआ तो उसमें बहुत डिटेल से लिया। देखो ये हमने, ये समझ में है ना द्रव्य रूप से, फिर ये वाक्य पढ़ती हूँ मैं। नहीं, जघन्य अवधि ज्ञान,
जघन्य अवधि ज्ञान जिस स्कंद को जानता है,
जिस स्कंद तक को जानता है, तक शब्द लगाना, क्योंकि बड़े स्कंदों को तो जानेगा ही।
हाँ,
ज्यादा हुआ। देखो फिर से पढ़ते, यह ज्ञान सेकंड लाइन ना, द्रव्य की अपेक्षा जघन्य रूप से जानता हुआ, यानी जघन्य अवधि ज्ञान
कितने
छोटे स्कंद तक, जैसे आपने कहा तक तीन लाइन पढ़ी थी, तीन लाइन तक स्पष्ट पढ़ा, चौथी लाइन नहीं पढ़ने को आई, तो ये जघन्य अवधि ज्ञान छोटे, यानी जिसका और एकदम कम है ऐसा अवधि ज्ञान भी, बड़े बड़े स्कंद तो ये कुर्सी वगैरह जैसे स्कंदों को तो जान लिया, कितने छोटे स्कंद तक जानेगा, तो यहाँ तक जानेगा, वो बात पर है। इसलिए कहते हैं जघन्य रूप से जानता हुआ एक जीव के औदारिक शरीर के संचय के उसके लिए अभी हमने जीवकांड में से पढ़ा,
तो
मध्यम योग से उसने लिया है औदारिक शरीर का संचय, ने एट ए टाइम उसके कितने इकट्ठा किया है औदारिक परमाणु, हर समय में अनंत ले रहा है, जिसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं, तो उसका संचय एट ए टाइम कितना होता है, तो उसको कहते हैं डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। अभी इतना ही ख्याल रखो, तो ये औदारिक शरीर का संचय, उसके साथ उसका विश्व सोचे लगे हुए, वो अनंत अनंत हो जाते हैं। अब उसको लोक में जितने असंख्यात है उससे भाग देना, यहाँ लिखा है औदारिक शरीर के संचय के लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण खंड करने का, यानी इतने असंख्यात खंड करेंगे हम, उनमें से एक खंड तक को जानता, तक शब्द लगाए ना,
तो भी अनंत में होगा,
बिल्कुल अनंत है, बिल्कुल होगा अनंतों में, क्योंकि एक एक औदारिक शरीर के एक परमाणु के साथ अनंत अनंत विश्रोप से पड़े। ये तो हमने देखा तो जगन्य रूप से कि कहां तक को जानता है, यानी जिसके पावर कम है वो यहां तक जानता है, और जिसकी पावर उत्कृष्ट है तो कहते हैं उत्कृष्ट रूप से, अर्थात उत्कृष्ट अवधि ज्ञान एक परमाणु तक को जानता है, वो जगन्य और अनुत्कृष्ट यानी इन बिटवीन वाले अवधि ज्ञान, अर्थात मध्यम अवधि ज्ञान जगन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत द्रव्य भेदों को जानता है, यानी हमने मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया, तो इसमें से बीच वाले कितने कितने स्पंदों के वहां तक को जानता है। ये द्रव्य की अपेक्षा भेद बताए, क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान जघन्य से अंगुल अर्थात उच्छेद अंगुल के असंख्यातवे भाग क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र ने अपने आत्म प्रदेशों से कितना बाहरी जानता है उसको क्षेत्र कहेंगे, कहाँ तक जानता है ना, कितने क्षेत्र तक को जानता है, पहले हमने कितने सूक्ष्म स्कंद तक को जानता है देखा, और यहाँ भी कितने क्षेत्र तक के वो स्कंदों को जानेगा, एक माइल के एरिया में जानेगा कि पूरे हमारे शहर के एरिया तक जानेगा, उसको क्षेत्र कहेंगे। तो मिनिमम यानी जो कम से कम क्षेत्र तक जानता है उसका अवधि ज्ञान जघन्य, और जो बहुत लंबे क्षेत्र तक जानता है उसका अवधि ज्ञान पावरफुल है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जघन्य में जघन्य कितना है, तो अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र को जानता है। यह अंगुल क्या होता है, यहाँ उच्छेद अंगुल कह दिया है। देखो हमने देखा था कि अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद होता है तो उसको अवसन्नासन्न कहा, स्कंदों के भेद देखे थे ना, ये उच्छेद अंगुल कहना किसको, उसका नाप क्या है, तो अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद को अवसन्नासन्न कहा। अब इसके आगे आगे जितने नाम लेंगे उसके आठ गुना यानी उसको आठ गुना करेंगे तो उसका नाम होता है सन्नासन्न। तीसरे नंबर पर रेणु त्रुट रेणु, फिर त्रस रेणु, फिर रथ रेणु, उसके बाद उत्तम भोग भूमि के बालाग्र लेना, उत्तम भोग भूमि के जो जीव है उनके बाल का अग्रभाग जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो जाए वो उससे आठ गुना बढ़ा है, उत्तम भोग भूमि वालों से मध्यम भोग भूमि वालों का आठ गुना और जाड़ा यानी मोटा होगा, उससे आठ गुना जघन्य भोग भूमि वालों का, उससे आठ गुना कर्म भूमि वालों का, वो बालाग्रह, फिर लीक,
लीक
उससे आठ गुना, ये बाल के जो है ना उससे लीक जो कहीं ना लीक समझते ना, वो जू और उसके वो अंडा वो लीक कहते उसके साइज वाला, फिर उससे आठ गुना उसको जू कहते हैं या सरिसो भी कहते हैं, सरिसो से आठ गुना यव, यव नाम का जो अनाज आता है वो जयपुर वगैरह साइड में आता है, जव 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 यव कहते हैं, वो जव की रोटी खाते हैं ना, हाँ गहू जैसा होता है, हाँ थोड़ा बड़ा होता है, और ये आठ यवों के एक अंगुल होता है उसको उच्छेद अंगुल कहते हैं, क्योंकि अंगुल के भी बहुत भेद है, हर एक जो छोटे बड़े बच्चों का होगा उसका अपना अंगुल छोटा होगा, हमारा बड़ा होगा, तो चक्रवर्ती का कितना बड़ा होगा, भरत चक्रवर्ती का, उसको आत्मांगुल कहते हैं, अपना अपना अलग अलग साइज वाले का अपना अपना अंगुल अलग है, अंगुल नहीं इतनी चौड़ाई इसकी। तो ये है उच्छेद अंगुल, और उच्छेद अंगुल को 500 गुना करेंगे तो वो प्रमाण अंगुल होता है, जो हमारे अवसर्पणी का प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल होता है उसको प्रमाण अंगुल कहेंगे। यहाँ बात किसकी चल रही है, उच्छेद अंगुल के असंख्यात्वा भाग, यानी 8 यव के साइज वाला उच्छेद अंगुल है उसका असंख्यात्वा भाग कर दो, इतने क्षेत्र तक को जानेंगे। बहुत छोटा है वो, सूक्ष्म निगोद की जगन्य अवगाहना है ना, तीसरे समय में होती है, उतने तक को जानता है। अभी हमने इसमें देखा क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य क्षेत्र जो है, देखो यहाँ क्षेत्र की बात बताते हैं, जगन्य अवधि ज्ञान का कहाँ क्षेत्र होता है, मिनिमम कितना क्षेत्र तक को जानेगा। तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव जन्म से तीसरे समय में होने वाली जगन्य अवगाहना, जगन्य क्यों, पहले समय वो इसे चौकोर होता है, बाद में गोल होता है, गोल होता है तो उसकी अवगाहना जगन्य हो जाती है, उसका प्रमाण जो पहले कहा था उस प्रमाण जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, यानी वो तो अपने प्रदेश से इतना वो नहीं के बराबर है। इस क्षेत्र के बाहर जो है उसको वो नहीं जानता, नहीं। ये कहना यही बताए ना अभी उन्होंने। तो जगन क्षेत्र अपेक्षा अवधि ज्ञान जगन्य से अंगुल लेने अंशेद अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र को जानता है, और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को जानता है। असंख्यात लोक यानी पुद्गल तो मात्र लोक में ही है, परंतु वो अवधि ज्ञान इतना पावरफुल है, उसमें इतनी पावर है कि ऐसे एक लोग क्या ऐसे असंख्यात गुना बड़ा क्षेत्र होता तो भी वो जान लेता, इतनी उसकी पावर है। अभी वहाँ पुद्गल नहीं तो क्या करे, यानी लोग के सभी पुद्गलों को जानेगा ना वो, ये कहना था। और वो मध्यम वाले जो है ना, जिसको अजगण्य और अनुत्कृष्ट कहते हैं, जगन्य और उत्कृष्ट के अंतरालगत क्षेत्र भेदों को जानता है। अब यहीं रुकेंगे हम, क्योंकि अभी वो काल और भाव की भी बात हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतमो। अश्विन भाई
ब्रह्म ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयनम नमो।